आशा करते हैं आप सबकी वृंदावन यात्रा बड़ी कृष्ण भावना भावित ढंग से चल रही है। आज यहाँ हम जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान का नाम है अक्रूर घाट। अक्रूर घाट के बारे में पुराणों में काफी वर्णन है। तीर्थों में से ये राजा माना जाता है, तीर्थराज। कभी कभी प्रयाग को भी तीर्थराज कहा जाता है। और समस्त तीर्थ स्थान इस अक्रूर घाट में स्थित हैं, ऐसे भी कहा जाता है। साथ साथ ऐसे कहा गया है कि जो यहाँ अक्रूर घाट में यमुना जी में स्नान करेगा कार्तिक पूर्णिमा में, तो निश्चित ही भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण के समय भी यदि कोई यहाँ स्नान कर ले यमुना में, तो उसे बहुत लाभ मिलेगा। बल्कि एक आदेश है ये शास्त्रों का कि ऐसे समय पे हमें यहाँ आके स्नान करना चाहिए। वैसे हर एक तीर्थ की महिमा होती है और पुराणों में विभिन्न तीर्थों का के महात्म्य का वर्णन पाया जाता है, तो उसी प्रकार से अक्रूर घाट या अक्रूर तीर्थ का भी वर्णन ऐसे आदि वराह पुराण आदि पुराणों में किया हुआ है। वैसे यमुना जी यहां से पहले बहा करती थी, जब श्री कृष्ण यहां अपनी प्रकट लीला कर रहे थे तो यमुना जी यहीं से बहती थी। लेकिन अभी 5000 साल बीत गए तो यमुना जी का पथ हट गया है। अभी करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूर यमुना जी बहती है। उस समय बहती थी यहां, इसलिए तो ये घाट नाम रखा गया, अक्रूर घाट। तो यहां कई महत्वपूर्ण घटनाएं या लीलाएं हुई। वैसे तो अक्रूर घाट से हम जान सकते हैं कि अक्रूर जी से यह संबंधित होगा। और ये लीला हम सब ने सुनी है कि श्री कृष्ण बलराम को ले आए अक्रूर, और यहां श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ने अक्रूर को महाविष्णु और अनंत शेष का रूप दिखलाया। ये घटना अवश्य यहां हुई, लेकिन इसके पहले एक करीब करीब 3-4 साल पहले और एक घटना यहां पर हुई थी रासलीला के पहले। उस समय भगवान हुए होंगे 7 और 8 साल के बीच के हुए होंगे। उन्होंने ब्रजवासियों को इसी स्थान में गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया था, तो इसका वर्णन भी श्रीमद् भागवत में है। साथ साथ 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जब व्रज की यात्रा कर रहे थे तो यहां पे कई दिनों तक रुके थे इसी स्थान में, अक्रूर घाट में। अब स्वरूप काफी बदल गया है, काफी वैसे विकास है, बड़े मंदिर हैं और इतना बड़ा प्रांगण है। बाह्य दृष्टि से बहुत कुछ बदला हो लेकिन आध्यात्मिक महात्म्य बदलता नहीं है। अक्रूर तीर्थ, अक्रूर घाट उतना ही पावन है हम सब के लिए जितना कि पहले था और भविष्य में भी रहेगा। जब श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला समाप्त हुई, सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन ये किया था कि कैसे इंद्रदेव ने आके श्री कृष्ण के सामने क्षमा याचना की थी। तो इंद्रदेव की गलती और क्षमा चाहना श्री कृष्ण से, इसका वर्णन करते करते सुखदेव गोस्वामी जी को और एक इसी तरह की घटना याद आई, जब वरुण देव ने आके क्षमा याचना की भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो हुआ ये कि नंद महाराज जी वृंदावन में एकादशी के व्रत का पालन कर रहे थे। एकादशी की तिथि की अवधि कम थी और द्वादशी के समय पारण का समय भी बहुत छोटा समय था, अवधि बहुत कम थी। तो बहुत जल्दी उठे द्वादशी की तिथि पर अक्रूर जी, क्षमा कीजिए नंद महाराज जी, और यमुना में स्नान करने जल्दी से चले गए। अब उनका उद्देश्य था कि जल्दी से स्नान करके पारण किया जाए एकादशी के व्रत का, नहीं तो समय बीत जाने वाला था। उन्होंने ये नहीं देखा कि स्नान करने के लिए समय अशुभ था, तो अशुभ समय में जब स्नान नदियों में आदि किया जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। परंतु नंद महाराज जी जो कर रहे थे वो एकादशी के व्रत के पारण के लिए कर रहे थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। फिर भी वहां वरुण देव के एक सेवक थे, उन्होंने देखा कि यहां नंद महाराज जी गलत समय पर, अशुभ समय पर अब ये स्नान कर रहे हैं यमुना में, तो उनको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करके उन्हें ले गए वरुण देव के दरबार में, वरुण लोक में। आप जानते हैं कि वरुण देव सारे जल के देवता हैं, तो वहां ले गए उनको। तो नंद महाराज जी के साथ में जो गोपगण आए थे, वरिष्ठ गोप, उन्होंने हाहाकार मचाया कि नंद महाराज जल में चले गए, आए नहीं बाहर। तो श्री कृष्ण के कानों में खबर पहुंच गई, तुरंत श्री कृष्ण वहां पर पहुंच गए और छलांग मारी उन्होंने जल में और सीधे चले गए वरुण लोक। अब श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, सर्वज्ञ हैं, तो वो सब जानते हैं। तो तुरंत समझ गए कि ये काम वरुण जी के सेवक का है। तो वरुण लोक में पहुंच गए तैरते तैरते श्री कृष्ण। जैसे ही वरुण देव ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए, खड़े होकर बड़े अच्छे ढंग से यथा उचित वैसे श्री कृष्ण का स्वागत किया, उन्हें सिंहासन पर बिठाया और क्षमा याचना की उनसे। उन्होंने कहा कि मेरे एक मूर्ख और अज्ञानी सेवक ने आपके पिता नंद महाराज को गिरफ्तार कर लिया। अब जो सेवक की गलती है वो प्रभु को स्वीकार करनी पड़ती है, ये एक दुनिया का नियम है। वैसे हुआ भी था पहले ऐसे, जब श्री भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में वैकुंठ में निवास तो करते हैं, जब चतुष कुमार वहां पर वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे थे तो जय विजय नाम के दो द्वारपालों ने उनको रोका था, तो क्रोधित होकर चतुष कुमारों ने उनको श्राप दे दिया। तो ये सब कोलाहल वहां बाहर मच रहा था, तो भगवान नारायण ने समझ ली कि कुछ तो चल रहा है द्वार के बाहर, शीघ्र ही चले आए वहां पर। और फिर उन्होंने क्षमा याचना की चतुष कुमारों से कि क्षमा कीजिए, हमारे द्वारपालों ने आपके प्रति गलत व्यवहार किया। वैसे सेवक का जो दोष होता है वो प्रभु का होता है, तो वास्तव में ये मेरा दोष है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से जब यमदूतों ने अजामिल को गिरफ्तार करना चाहा और विष्णुदूत उस समय चले आए और यमदूतों को उन्होंने मना कर दिया, तो उस समय जब वापस यमदूत गए यमराज के पास, तो यमराज भी बड़े शर्मिंदा हो गए, कह रहे तुम लोगों ने गलत काम कर लिया, तुम्हें पता नहीं कि जिसके मुख से हरि का नाम निकलता है उसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्षमा याचना की कि मेरे सेवकों ने गलती की तो गलती मुझ पर आती है, दोष मेरा हो जाता है। तो वरुण देव भी ऐसे ही सोच रहे थे, मेरे एक मूर्ख सेवक ने ऐसे गलती की तो ये मैंने ही किए हुए अपराध के बराबर हो जाता है, तो मुझे क्षमा कीजिए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण का की उपासना की, अनेक सुंदर उपहार आदि भेंट किए उन्हें, और फिर नंद महाराज जी को वापस श्री कृष्ण ले गए। अब नंद महाराज जी ने वरुण लोक के ऐश्वर्य को देखा और बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा ऐश्वर्य। तो जब वापस आए तो सारे ब्रजवासी लोग इकट्ठे हुए थे यमुना के तट पर, तो हर्ष से सभी चिल्लाने लगे, जय जयकार करने लगे कि नंद महाराज और श्री कृष्ण वापस आ गए। थोड़े चिंतित हो गए थे ना, पहले तो नंद महाराज चले गए जल में और आए नहीं, उसके पीछे उनके पीछे श्री कृष्ण चले, वो भी काफी समय तक आए नहीं, तो ब्रजवासी बहुत चिंतित थे। और अब जब दोनों श्री कृष्ण और नंद महाराज जी प्रकट हुए जल के बाहर, तो हर्ष से जय जयकार सारे ब्रजवासी करने लगे। फिर नंद महाराज ने द्वादशी की तिथि पर फिर व्रत के पारण किया, उपवास तोड़ दिया और सारे ब्रजवासियों को बताया, अरे मैं वरुण लोक में पहुंचा था और वहां ऐसा ऐश्वर्य था, और ऐश्वर्य का वर्णन किया क्या क्या उन्होंने देखा वहां पर। और ब्रजवासी इस वर्णन को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन आगे जो कथा नंद महाराज जी करने वाले थे उसको सुनकर वो और भी आश्चर्यचकित हो गए। वो क्या था कि वरुण देव जो इतने बड़े देवता हैं, इतने ऐश्वर्यशाली और इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सारे ब्रह्मांड के, उन्होंने हमारे कृष्ण को सिंहासन पर बिठाया और बिठाकर उनकी आरती उतारी, उनको भेंट दिए और तरह तरह से उनकी उनका आदर सत्कार, कृष्ण का आदर सत्कार किया और भगवान कह के संबोधित किया। तो सारे ब्रजवासियों ने यह सुन ली बात तो विस्मित हो गए। पहली बात तो यह है कि वो सोच रहे थे कि वरुण लोक इतना ऐश्वर्यशाली है, और जब सुना कि श्री कृष्ण भगवान है तो उन्हें लगा कि श्री कृष्ण का भी लोक तो है, जैसे वरुण देव का लोक है तो श्री कृष्ण का भी तो लोक अवश्य होगा, तो हम श्री कृष्ण का लोक भी देखना चाहते हैं, क्या श्री कृष्ण हमें उनका लोक दिखाएंगे। वैसे भक्त को ऐसे संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी भक्त निराश हो जाते हैं कि क्या हम भी गोलोक धाम एक दिन जाएंगे, अवश्य जाएंगे लेकिन बहुत जल्दी जाना नहीं है, क्योंकि सेवा बहुत करनी है, प्रचार बहुत करना है, इसके पहले हमको शुद्ध होना है, शुद्ध भक्त बनना है। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् उत्साहान निश्चयात् धैर्यात्, बड़े उत्साह पूर्वक, धैर्य पूर्वक, निश्चय पूर्वक हम साधन भक्ति के नियमों का पालन करते रहेंगे तो अवश्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हम हो जाएंगे और गोलोक वृंदावन निश्चित ही पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा जी बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उनकी सेवा करता है, हर अवस्था में, कष्ट की अवस्था में भी कभी भी श्री कृष्ण की सेवा को त्यागता नहीं है, तो वो व्यक्ति भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है, एक अधिकारी व्यक्ति हो जाता है, भगवान के धाम की को प्राप्त करना उसका अधिकार हो जाता है। जिस प्रकार से पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करना ये हमारा एक अधिकार होता है, इसे मनु अपने नियमों इसे दाय भाग सिद्धांत कहते हैं। दाय भाग सिद्धांत का मतलब है कि बच्चों को अपने माता पिता की संपत्ति तो मिलनी ही मिलनी है, केवल उन्हें जीवित रहना चाहिए तब वो मिल जाएगा उनको। तो ठीक उसी प्रकार से जो लोग भक्ति में जीवित रहते हैं, कृष्ण भावनामृत में रत रहते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते रहते हैं, उन्हें निश्चित ही भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, कोई संशय की बात इसमें नहीं है। केवल हम भक्ति करते रहे। फिर भी ये ब्रजवासी योग माया के प्रभाव में थे और सोच रहे थे कि हम तो यहाँ गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और वरुण देव का लोक इतना ऐश्वर्यशाली था, तो यदि श्री कृष्ण भगवान हैं और वरुण देव ने घोषणा की, वरुण देव तो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, वो तो बड़े देवता हैं, उन्होंने घोषणा की तो फिर निश्चित ही कृष्ण भगवान होंगे। अभी हमने भी देखा है कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, ऐसे अद्भुत कार्य किए थे, तो ये भगवान हैं तो इनका धाम भी बहुत श्रेष्ठ होगा, वरुण देव से भी कहीं ज्यादा ऐश्वर्यशाली होगा। तो हम भी इस धाम को देखना चाहते हैं, क्या भगवान हमें वहां ले, कृष्ण हमें वहां ले जाएंगे, ऐसे विचार उनके मन में आया। अब देखिए ब्रजवासियों की विशेषता ये है कि यद्यपि वो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते थे, केवल अपना लाडला प्यारा एक ग्वाल बाल, अपना बच्चा मित्र आदि मानते थे, फिर भी जब 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 उन्हें याद आता था, जब जब उन्हें पता चलता था या उन्हें बताया जाता था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन ऐसे विस्मित अवस्था में भी उनका जो एक मधुर प्रेम है, जो उनकी जो मीठी भावना थी श्री कृष्ण के प्रति, वो कभी भी शिथिल नहीं होती थी, कमजोर नहीं होती थी। ये वृंदावन की विशेषता है। जब श्री कृष्ण को अक्रूर यहां से ले गए, अक्रूर घाट से ही होकर फिर आके वहां चले गए मथुरा में, और फिर श्री कृष्ण और बलराम जी ने कंस और अन्य असुरों का वध किया, तो देवकी और वसुदेव जो वहां उस स्थान में उपस्थित थे, उनको बड़ा डर लग गया कि अरे हमने तो सोचा था कि कृष्ण और बलराम हमारे बच्चे हैं, लेकिन ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के बाद हमें समझ में आया है कि ये तो भगवान है, तो कैसे हम इनको बच्चे की तरह इनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। उनकी पहली इच्छा थी कि बच्चों का आलिंगन करें, उनके सर को सूंघे, सर को चूम लें, जैसे माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। लेकिन जब ये दृश्य देखा, श्री कृष्ण और श्री बलराम के शक्ति का प्रदर्शन देखा, तो उस समय इनके उनके हृदय में एक डर की भावना आ गई कि अरे हम तो केवल इनको हमारे बच्चे मान रहे थे। तो श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि वास्तव में वसुदेव और देवकी अभी हमें पुत्र नहीं मान रहे हैं, वो अपने आप को हमारे माता पिता नहीं समझ रहे हैं। सारा मजा किरकिरा हो गया। तो श्री कृष्ण ने सोचा अरे ये गड़बड़ हो गया, फिर वात्सल्य रस का आनंद कैसे मैं लूंगा, वृंदावन का तो, वृंदावन में हम आए हैं इन वृंदावन के रसों का आस्वादन करने के लिए, और यदि यहां फिर ये हमें भगवान समझ बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान के सिवाय सभी लोग भगवान बनना चाहते हैं। केवल भगवान ही हैं जो भगवान नहीं बनना चाहते हैं, वो ग्वाल बाल बनना चाहते हैं। लेकिन फिर भी लोग जब उन्हें भगवान समझ लेते हैं, विशेष करके वृंदावन में, तो उनको अच्छा नहीं लगता। वृंदावन के बाहर वो अपने भगवान का स्वरूप स्वीकार करते हैं, परंतु जब वृंदावन में रहते हैं तो वो केवल ग्वाल बाल रह के रहना पसंद करते हैं। तो खैर देवकी और वसुदेव की ऐसी भावना शिथिल हो गई, वात्सल्य भावना शिथिल तो क्या, प्राय लुप्त हो गई। फिर श्री कृष्ण ने तुरंत योग माया का पर्दा उनकी आंखों पर डाल दिया। फिर तुरंत देवकी और वसुदेव सोचने लगे, अरे नहीं नहीं ये तो हमारे बच्चे ही हैं, चलो चलो। उसी तरह अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में विश्व रूप देखा श्री कृष्ण का, जिसका वर्णन भगवद गीता के 11वें अध्याय में है, तो उनका जो सख्य भाव था वो तुरंत मिट गया, शिथिल हो गया, और क्षमा याचना करने लगे वो अर्जुन से, कृष्ण से, कि मैंने बहुत बड़े अपराध किए आपके प्रति, वैसे आप तो भगवान हैं, लेकिन पागलपन में प्रणयेन प्रेम से, और कभी पागलपन से प्रमादेन मैंने आपको मित्र कह के संबोधित किया, कभी हे यादव, हे सखा, हे मित्र, हे केशव कह के मैंने आपको पुकारा। कभी कभी हम साथ में बैठ के भोजन लिया करते थे, एक दूसरे की मजाक उड़ाया करते थे, साथ में इधर उधर घूमते थे। मैं तो आपको केवल एक मित्र समझ रहा था, लेकिन आपके विश्वरूप दर्शन के बाद अभी मुझे समझ में आया है कि मैंने कितना अपराध किया आपके प्रति। आप तो परम सत्य हैं। तो भगवान को भी अच्छी भावना नहीं लगी, अरे रे अर्जुन मेरा सख्य भाव नष्ट हो गया। तो यद्यपि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो भी पार्षद है, नित्य पार्षद हैं भगवान के, फिर भी क्योंकि वो वृंदावन के भाव में नहीं है, हम देखते हैं कि उनका निकट का मधुर भाव जो है वो शिथिल हो जाता है श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रदर्शन के सामने। परंतु वृंदावन में ऐसे नहीं होता है। वृंदावन में ऐश्वर्य का प्रदर्शन होने के बाद भी व्रजवासियों का मधुर प्रेम शिथिल नहीं हो जाता है, वो मधुर प्रेम और भी मधुर होता है। इसलिए वृंदावन को माधुर्य धाम कहते हैं और वैकुंठ को ऐश्वर्य धाम कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है, बल्कि वृंदावन के ऐश्वर्य का ऐश्वर्य अतुलनीय है। वैकुंठ में भी इतना ऐश्वर्य नहीं है जितना कि वृंदावन में है, परंतु ब्रजवासियों का प्रेम इतना शुद्ध, इतना तीव्र और इतना मधुर होता है कि ऐसे मधुर भाव में वो उनको ऐश्वर्य का पता ही नहीं चलता है। जब श्री कृष्ण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं वृंदावन में असुरों का वध करने के लिए आदि, तो थोड़े समय के लिए वो विस्मित तो हो जाते हैं, फिर भी श्री कृष्ण को अपना ही समझते हैं। जब असुरों का वध हुआ तो ब्रजवासी सोचा करते थे कि भगवान नारायण ने हमारे बच्चे को बचा दिया। ये नहीं जानते थे कि उनका बच्चा स्वयं नारायण का आदि रूप है। और कभी सोचते थे हमने तो पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य काम किए हैं, इसलिए आज हमारा बच्चा बच गया। तो योग माया के प्रभाव में आकर व्रजवासी ऐसे सोचा करते थे। तो ये है वृंदावन की विशेषता। उसी प्रकार जब व्रजवासियों ने सुना कि वरुण देव ने इनको भगवान कह के घोषित किया है और इनकी सेवा की, आदर सत्कार उनका किया, तो व्रजवासियों का जो भाव था वो कोई कम मधुर नहीं हुआ, बल्कि उनकी आतुरता और बढ़ी, उनका प्रेम और भी बढ़ा। एक बहुत ही मासूम भाव में वो सोचने लगे कि कृष्ण भी हमें क्या उनके धाम दिखाएंगे, वहां ले जाएंगे। देखिए शहर के लोग, इनकी भावना बड़ी जटिल होती है। जो गांव के लोग हैं बड़े सीधे साधे होते हैं, भोले होते हैं। तो ये वृंदावन के निवासी थे, यद्यपि ये नित्य पार्षद हैं भगवान के, फिर भी गांव में रहने के कारण सीधा साधा जीवन उनका हुआ करता था। ना तो मोबाइल टेलीफोन था उनके पास, ना टेलीविजन था, ना कंप्यूटर था, ना गाड़ी थी, ना कुछ था, लेकिन सबसे सुखी थे। उनका जीवन केवल श्री कृष्ण पर निर्भर रहता था। कृष्णमय जीवन, कृष्ण के सिवाय उनको कुछ नहीं पता था। श्री कृष्ण उनके जीवन के केंद्र बिंदु थे, तो इसलिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब कृष्ण भगवान हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हमारे ही कृष्ण है वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी तरह से उनके भाव को समझ लिया कि ये कितने मासूम हैं, कितने शुद्ध हैं। तो भगवान ने सोचा मन ही मन में कि ये तो मेरे लोग हैं, निज जन हैं, ये धामवासी हैं, मेरे पार्षद हैं, और फिर भी वरुण लोक के ऐश्वर्य को देखकर डामाडोल हो गए। वो नहीं जानते कि वो वृंदावन में ही रह रहे हैं और वृंदावन का ऐश्वर्य कितना है, भूल गए हैं। अपने ही घर का ऐश्वर्य नहीं पहचान पा रहे हैं। दूसरी बात, उन्हें मेरे धाम को देखने की इच्छा है तो ठीक है, दिखाऊंगा और उनको साबित करूंगा इस दर्शन के द्वारा कि वो जो मेरा धाम है आध्यात्मिक जगत में, वो इस वृंदावन से बिल्कुल अभिन्न है। तो इस दर्शन या इस लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण इस बात को भी साबित करके दिखाना चाहते थे कि ये दोनों वृंदावन बिल्कुल एक ही हैं। दोनों वृंदावन अर्थात कौन से? एक तो गोलोक वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत में है, उसे पर व्योम वृंदावन कहते हैं। पर मतलब इस भौतिक सृष्टि के परे जो है आध्यात्मिक, व्योम मतलब आकाश या आसमान। तो आध्यात्मिक जगत या आसमान में स्थित जो गोलोक वृंदावन है उसे पर व्योम वृंदावन कहते हैं। और वही वृंदावन जब भगवान श्री कृष्ण यहां प्रकट कराते हैं भूमि पर, तो इसे भौम वृंदावन कहते हैं। और ये एक तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व की बात है कि भौम वृंदावन और पर व्योम वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक ही हैं वो। परंतु ये व्रजवासी यहां भौम वृंदावन में रहते रहते अपने आप को साधारण गांव के निवासी समझते समझते ये सोच रहे थे कि ये तो केवल गांव है हमारा, सुंदर है, बहुत अच्छा है, हम इसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे गाय अच्छे हैं, वन यहाँ अच्छे हैं, सुंदर हैं, रमणीय वातावरण यहाँ पे है। फिर भी वरुण लोक कितना ऐश्वर्यशाली होगा तो वहां कृष्ण का लोक कितना ज्यादा ऐश्वर्यशाली होगा। तो फिर भगवान ने सोचा ठीक है चलो अब दिखा ही देते हैं इनको। तो श्री कृष्ण सारे व्रजवासियों को यहां पर ले आए इस स्थान में। उस समय इस स्थान का नाम अक्रूर तीर्थ नहीं था, ब्रह्म हृद था। हृद मतलब एक सरोवर। यमुना जी, जैसे हम पहले कह रहे थे, यमुना जी यहां से बहती थी, तो यमुना जी को लगते हुए एक सरोवर था। और उस सरोवर में भगवान श्री कृष्ण व्रजवासियों को लेकर आए। उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया और जैसे वो उठे तो श्री कृष्ण ने उनको अपने कृष्ण लोक का दर्शन कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में अनगिनत वैकुंठ लोक हैं। उन वैकुंठ लोकों में से सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण लोक है कृष्ण लोक, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण द्विभुज रूप में निवास करते हैं। अन्य जितने भी वैकुंठ के लोक हैं उनमें भगवान चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं, नारायण स्वरूप में, परंतु कृष्ण स्वरूप में केवल कृष्ण लोक में निवास करते हैं। और कृष्ण लोक के तीन भाग हैं, एक है गोकुल, दूसरा है मथुरा और तीसरा है द्वारका। तो खैर, उन्होंने सारे व्रजवासियों को कृष्ण लोक का दर्शन कराया। ऐसे उनको नहीं लगा कि हम बहुत दूर से कुछ देख रहे हैं, जो कृष्ण लोक में हो रहा था वो दिख पाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने टीका में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को कोई भी साधारण एक वैकुंठ लोक नहीं दिखाया, स्वयं अपना लोक कृष्ण लोक दिखाया। हमें जानना चाहिए कि वैकुंठ लोक भी कोई साधारण लोक नहीं है, परंतु अनगिनत वैकुंठ लोक हैं जिसमें ऐश्वर्य भाव का प्राधान्य होता है, कृष्ण लोक में माधुरी का प्राधान्य होता है। इसलिए कृष्ण लोक एक है, वैकुंठ लोक अनेक है। तो श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाना चाहते हैं कि जिस लोक का दर्शन श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को करवाया वो कोई दूसरा वैकुंठ लोक नहीं था, साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण लोक का दर्शन कराया, गोलोक वृंदावन का। और ब्रजवासियों ने क्या देखा? ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को वहां भी देखा। ऐसा नहीं है कि जब श्री कृष्ण वहां से यहां आते हैं तो वहां खाली रह जाता है गोलोक वृंदावन। श्री कृष्ण की शक्ति अचिंत्य है, वो अपने आप को विस्तार करते हैं। तो फिर श्री कृष्ण यहां भी हैं और वहां भी हैं। तो वहां श्री कृष्ण लीला कर रहे थे अपने भक्तों के साथ में। तो ये सारे चीजें व्रजव्यासी ने देखी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि अरे हमारे कृष्ण वहां हैं और वो सबके साथ लीला कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और वहां का जो आध्यात्मिक वातावरण है या जो भक्ति वातावरण, वो तो यहां भी है। तब उनको पता चला कि इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को साबित करना चाहते थे ना कृष्ण, तो उन्होंने कर दिया व्रजवासियों को दिखाकर। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने सारे ब्रह्म ज्योति का दर्शन भी करवाया व्रजवासियों को। यद्यपि व्रजवासी भक्त हैं और उन्हें निराकार ब्रह्म से कोई मतलब नहीं होता है, निराकार ब्रह्म से जो आकर्षित होते हैं उन्हें ब्रह्मवादी कहते हैं, जो ज्ञान योग के पथ पे चलते हैं। फिर भी ब्रह्म ज्योति में ही सारे वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक भी स्थित हैं। जिस प्रकार से सूर्य के किरणों में सारे ग्रह यहां स्थित हैं, इसलिए जब व्रजवासियों ने सारी ब्रह्म ज्योति देखी तो उन्होंने सारे वैकुंठ लोक भी देखे, कृष्ण लोक भी देखा। और आचार्य गण समझाते हैं कि जिस प्रकार से आसमान में हम चांद को देखते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण लोक ब्रह्म ज्योति में या आध्यात्मिक आकाश में एक जगह स्थित है। तो ऐसे निराकार ब्रह्म का, वैकुंठ लोकों का और कृष्ण लोक का दर्शन व्रजवासियों ने किया यहां पर इसी स्थान में। तो क्योंकि भगवान ने ब्रह्म लोक का दर्शन करवाया व्रजवासियों को, इस सरोवर का नाम हुआ ब्रह्म हृदय। ब्रह्म लोक का मतलब ये नहीं है कि ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का निवास स्थान, वो तो अलग ब्रह्म लोक है। लेकिन ब्रह्म का अर्थ ये भी होता है आध्यात्मिक, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, आध्यात्मिक या चिन्मय। तो भगवान श्री कृष्ण ने चिन्मय जगत का दर्शन करवाया व्रजवासियों को, इसलिए ये ब्रह्म हृदय कहलाता है। तो ये महत्वपूर्ण लीला यहां पर हुई और इसके चार साल बाद, करीब करीब तीन या चार साल बाद, जब श्री कृष्ण की वृंदावन लीला समाप्त होने का समय आया तो अक्रूर जी उनको यहां लेकर आए। तो आप जानते हैं कि श्री कृष्ण करीब करीब 10 से 11 साल के बीच में तक, 10 साल 7 महीने ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वो वृंदावन में रहे। फिर 28 साल की आयु तक मथुरा में रहे और 125 साल की आयु तक द्वारका में रहे। और जब पहले मथुरा से ले गए, वो वसुदेव उनको ले गए तो गोकुल ले गए, क्योंकि नंद महाराज और यशोदा माता वहां रहा करती थी गोकुल में। गोकुल में थोड़े साल रहे और असुरों के भय से सारे ब्रजवासीगण फिर वृंदावन छटीकरा चले आए। फिर वहां से थोड़े सालों के बाद नंदगांव चले गए। फिर नंदगांव से अक्रूर जी उनको लेने आए। कंस वैसे कृष्ण और बलराम को मारना चाहते थे और धनुर्यज्ञ के नाम पे उन्होंने कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दिया। तो उन्होंने सारी व्यवस्था की थी, चाण और मुष्टिक जैसे बलवान मलयोद्धा थे और कुवल्य पीड नाम का एक पागल उन्मत्त हाथी था। ऐसे अनेक व्यवस्थाएं कंस ने की इस उद्देश्य से कि इस तरह से नहीं तो उस तरह से, उस तरह से नहीं तो इस तरह से, किसी न किसी तरह से ये न के न प्रकार ये न कृष्ण और बलराम की हत्या करनी ही करनी है। उन्होंने इतने सारे असुर भेजे थे वृंदावन में लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाए, बल्कि सब वहीं पर मर गए। तो अब कंस ने ठान लिया कि अब मेरे जान को बचाना है मुझे, इसलिए ऐसे करना ही होगा। तो अक्रूर जी को उन्होंने बुलाया जो उनके मंत्री थे। अक्रूर जी वैसे कृष्ण के चाचा हैं, तो अक्रूर जी को पता चला कि कंस क्या करना चाहते हैं। लेकिन अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, तो अच्छी तरह से जानते थे कि श्री कृष्ण और बलराम जी कौन हैं। वो पूरी तरह से सक्षम हैं, समर्थ है अपने आप की रक्षा करने के लिए, तो उनको कोई चिंता नहीं हुई। और ये भी समझ गए कि ये श्री कृष्ण की इच्छा है कि उनको अभी वृंदावन लीला समाप्त करके मथुरा में आना है। और साथ साथ में अक्रूर ने सोचा, मुझे कृष्ण और बलराम का दर्शन करने का सुअवसर मिल जाएगा। तो कंस की बात मान ली और अक्रूर जी रथ में बैठकर चल पड़े मथुरा से वृंदावन की ओर। वैसे अक्रूर जी की यात्रा और उनकी जो भावना हुई इस यात्रा के समय, वो हम सब के लिए एक श्रवणीय विषय है। उनका भाव हम सबके लिए एक अनुसरणीय भाव है, क्योंकि ये मुख्य विषय आज का नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे। परंतु संक्षेप में इतना अवश्य कहेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम वृंदावन आते हैं तो हमें ऐसे ही आना चाहिए जैसे कि अक्रूर जी आए थे मथुरा से। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वृंदावन आते समय घोड़े पर सवार होकर या रथ में सवार होकर आना है। जब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वैसे आना चाहिए जैसे अक्रूर आए थे, इसका मतलब है कि अक्रूर जी के भावना को हमें स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते करते वो आए और बड़े आतुरता से, बड़े भक्ति भाव से कि कब मैं वृंदावन पहुंचूंगा, कब श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन होगा। और जैसे वो आए वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्होंने व्रज रज में वृंदावन की मिट्टी में श्री कृष्ण के पवित्र या पावन चरण चिन्ह देखे, पहचान गए। क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह जो हैं वो विशेष होते हैं। तो तुरंत अपने रथ को रोककर वो उतरे और वहीं पर मिट्टी में लौटने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। चाहे हम भौतिक जगत में कोई भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े व्यक्ति हो या छोटे व्यक्ति हो, हम कोई भी हो, लेकिन जब हम वृंदावन आते हैं तो हमें यही भाव रहना चाहिए। हमारे कोई सम्मान आदि का विचार न करके हमें उतर के व्रज रज में लौटना चाहिए, जैसे अक्रूर जी लौटे थे। अक्रूर जी ने ये नहीं सोचा मैं यदु हूं और मैं क्षत्रिय हूं, मैं मंत्री हूं, इतना बड़ा व्यक्ति हूं, तो मैं कैसे अभी लौट सकता हूं रज में। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी तैयार होना चाहिए। तैयार बल्कि एक अहोस सौभाग्य होगा हमारा। ये हर किसी को अवसर नहीं मिलता है वृंदावन के रज में आके लौटना। आप सब कितने लौटे हैं आज तक? इस बार आने के बाद रज में लौटे हैं कभी? एक भी नहीं? तो करना चाहिए, एक बार तो कम से कम लौट लेना चाहिए वृंदावन के रज में। तो खैर अक्रूर जी आ तो पहुंचे नंदगांव में, और नंदगांव में सबने देखा, ब्रजवासियों ने अक्रूर जी को देखा, उन्हें पता चला कि अक्रूर जी क्यों आए हैं। सत्कार तो किया अवश्य अक्रूर जी का, परंतु मन ही मन वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि अक्रूर जी यहां श्री कृष्ण को ले जाने के लिए आए हैं। अक्रूर जी श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जाएंगे, इसलिए वो अक्रूर उनका नाम ठीक नहीं है उनके लिए। अक्रूर का मतलब है जो क्रूर नहीं है, लेकिन ये इतने बड़े क्रूर व्यक्ति हैं क्योंकि श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहे हैं। इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है? वास्तव में सही बात है, क्योंकि श्री कृष्ण ही हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति हैं। तो कोई हमें कृष्ण भावनामृत से दूर करना चाहे तो ये सबसे बड़ी क्रूरता की बात है। सबसे बड़ी हिंसा है ये। तो हमें ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए कि अन्यों की श्रद्धा कृष्ण भक्ति में और कृष्ण में बढ़ती रहे। हमें ऐसे कभी कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि अन्यों की श्रद्धा कृष्ण में, कृष्ण भक्ति में कम हो जाए, क्योंकि ये एक हिंसा होगी। तो खैर, तो लोगों ने, ब्रजवासियों ने कहना शुरू कर दिया, आपका नाम तो अक्रूर नहीं है, वैसे आपका नाम क्रूर होना चाहिए था। तो वहां नंदगांव के पास ही एक डेढ़ मील दूर वहां से एक स्थान है, वहां पर गोपियां रोक रही थी अक्रूर जी के रथ को कि नहीं, आप नहीं ले जा सकते श्री कृष्ण को यहां से। रथ के सामने आ गई, थोड़ी गोपियां रथ के चक्कों के नीचे लौट गई, लेट गई वहां पर, और गोपियां अनेक वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। बड़े मुश्किल से श्री कृष्ण अक्रूर जी ने रथ को दूसरी तरह लेकर वो आगे चल पड़े। इस स्थान को आजकल बिजवारी नाम के से जाना जाता है, वैसे एक अपभ्रंश है विद्युत पुंज। विद्युत पुंज मतलब जब विद्युत या बिजली जब किसी को लगती है तो कैसे लगता है, वज्र जब लगता है ना, तो ऐसे नहीं लगता कि किसी ने फूलों की वर्षा की हमारे ऊपर। तो वज्र का प्रहार जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो गोपियों को अक्रूर जी का श्री कृष्ण को उनसे दूर ले जाना एक वज्र के प्रहार के समान ही लगा, इसलिए वहां पर बेहोश हो पड़ी। इसलिए नाम था विद्युत पुंज, लेकिन विद्युत पुंज का अपभ्रंश होते होते अब बिजवारी हो गया, तो वो गांव का नाम अब है बिजवारी। और फिर जब श्री कृष्ण आगे चले गए तो ब्रजवासी गोपियों को होश फिर से आ गया, पीछे पीछे आई, फिर से श्री कृष्ण के रथ को रोक दिया। और जिस गांव में ये घटना हुई उस गांव का नाम है परसों, और नाम इसलिए आया कि श्री कृष्ण गोपियों को सांत्वना देना चाहते थे कि मैं आऊंगा। उन्होंने कहा मैं परसों आऊंगा, चिंता नहीं करना, इसलिए उस गांव का नाम अब हो गया परसों। लेकिन परसों आया, नरसों आया, और उसके बाद कई दिन आए, लेकिन श्री कृष्ण लौट के नहीं आए। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि उसके पास में और एक गांव है जिसका नाम है सी। ये भी एक अपभ्रंश है। पहले शीघ्र इसी स्थान में श्री कृष्ण ने कहा था शीघ्रम, मैं बहुत ही जल्दी लौट के आऊंगा, शीघ्र लौट के आऊंगा। वो कृष्ण शीघ्र नहीं आए वो दूसरी बात है, लेकिन उस गांव का नाम ऐसे पड़ गया सी। तो खैर, अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को बिठाकर रथ में ऐसे अंत आखिर यहां पर पहुंचे ब्रह्म हृदय में। रथ को रोककर अक्रूर जी रथ से उतरे, यमुना जी में गए, आचमन आदि किया, जलपान किया, और फिर पहले श्री कृष्ण गए, श्री कृष्ण ने आचमन जलपान करके जब वापस आए फिर अक्रूर जी जल में गए। और जैसे ही जल में प्रवेश किया उन्होंने देखा कि जल में श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अभी अभी तो मैं उनको रथ में देखकर आया था, अब यहां कैसे आए ये, तो कहीं मैंने भूल तो नहीं देखा। तो फिर से वो रथ की ओर चले गए और देखा कि श्री कृष्ण और श्री बलराम जी रथ में ही बैठे हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। दोबारा फिर यमुना जी में आए और देखा कि यहां भी कृष्ण और बलराम हैं, लेकिन इस समय श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ने अपने रूप को बदल दिया था, अपने स्वरूप को बदल दिया था। तो इस समय वो पहले दर्शन किया अनंत शेष का अक्रूर जी ने, सफेद, बहुत सफेद, और उनका उनके फण भी नीले रंग के थे, उनके अनेक फण थे और बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। वो घिरे हुए थे गंधर्वों से, किन्नरों से, विद्याधर आदि ऐसे जो ऊपर लोकों के निवासी हैं उनसे घिरे हुए थे, वैकुंठ के निवासी भी आकर उनकी उपासना कर रहे थे और साथ साथ उनके ऊपर शयन कर रहे थे भगवान विष्णु। महाविष्णु का दर्शन किया क्रूर जी ने, तो श्री कृष्ण महाविष्णु बने थे और बलराम जी अनंत शेष बने थे। तो महाविष्णु का सुंदर शरीर था, दिव्य शरीर, श्याम रंग का पीतांबर धारण की हुई थी उन्होंने, और उनको घेर के भी अनेक उनके नित्य पार्षद थे जो उनकी उपासना कर रहे थे। तो अक्रूर जी बड़े विस्मित हो गए इस दृश्य को देखकर, और तुरंत उन्होंने स्तुति करना शुरू कर दिया। एक पूरा अध्याय सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि अक्रूर जी ने क्या प्रार्थना की, क्या स्तुति की। ऐसे स्तुति करने के बाद फिर अपना स्नान आदि सब कर लिया, फिर वापस रथ में चले आए। और जब चले आए तो उनके चेहरे को देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, क्योंकि चेहरा तो वैसे नहीं था ना, जैसे जब वो पहले गए थे तो वैसे का चेहरा नहीं था। अब ऐसा दृश्य देखने के बाद किसी का चेहरा वैसे का वैसे कैसे रह सकता है, परिवर्तन तो होगा ना। यदि समझ लीजिए आप जमुना जी में स्नान करने जा रहे हैं, वहां दर्शन भगवान का हो जाता है, तो लौटेंगे तो कैसे लौटेंगे आप, तो पहचान पाएंगे ना कि कुछ हुआ है। तो कृष्ण बलराम तो वैसे भी सब जानते हैं, तो वो केवल थोड़ा मजाक उड़ाना चाहते थे अक्रूर जी का। तो उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि अरे अक्रूर, क्या कोई चमत्कार आपने देखा है क्या, जानबूझ के पूछ रहे थे श्री कृष्ण। तो अक्रूर जी ने पूछा, जितने भी चमत्कार के चीजें हैं, चाहे वो आसमान में हो, भूमि पर हो, जल में हो, वो सब आपके अंदर निवास करते हैं, इसलिए जब आपको देखते हैं तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार की बात क्या हो सकती है। और फिर वो रथ में सवार हुए और रथ को चला के मथुरा की ओर चले। उसके बाद इस विषय पे कोई चर्चा हुई नहीं, अक्रूर जी बस शांत रहे। अब क्या बोलना क्या रह गया था, भगवान ने दर्शन दिलाकर ही सब कुछ कह दिया, अब कुछ बोलने की बात रही ही नहीं। तो चुपचाप अक्रूर जी अपना रथ चला के उनको मथुरा में ले गए। तो ये घटना भी यहीं पर हुई। अब अक्रूर घाट के संबंध में एक तात्विक बात, एक तत्व की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये लीला यहां पर इस तरह से क्यों हुई। अक्रूर जी ने जो दर्शन किया श्री कृष्ण बलराम का चतुर्भुज रूप में, ना विष्णु स्वरूप में, और बलराम जी का अनंत शेष के रूप में, ये यहां पे इस स्थान में क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक रहस्य है। तो थोड़ा ध्यान से इस तत्व की बात को सुनिएगा। श्री जीव गोस्वामी ने भेद किया है दो प्रकार के कृष्ण में। वैसे हैं कृष्ण एक ही, लेकिन वो कहते हैं कि जो वृंदावन में निवास करने वाले कृष्ण हैं वो अवतारी कृष्ण हैं, और वृंदावन के बाहर जो कृष्ण हैं वो अवतार कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नानावतार मकरोत भुवनेशु किंतु। तो भगवान श्री राम, नरसिंह, नारायण, विष्णु, अनेक स्वरूप हैं श्री कृष्ण के, अनगिनत ऐसे स्वरूप हैं, और ये समय समय पर इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। तो ये सारे कार्य वृंदावन के श्री कृष्ण नहीं करते हैं, ये अवतार कृष्ण करते हैं, अवतारी कृष्ण नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, कि अन्य जितने भी रूप हैं भगवान के वो अवश्य भगवान हैं, परंतु वो स्वयं भगवान नहीं है, स्वयं भगवान केवल श्री कृष्ण हैं, और अन्य जितने भी भगवान के स्वरूप हैं वो सब उनके अंश या अंशों के अंश हैं जिनको कला कहते हैं। वैसे हमें यह भी जान लेना चाहिए कि ये अचिंत्य भेद अचिंत्य भेदा भेद तत्व है कि कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं और कृष्ण जो वैकुंठ में रहते हैं और नरसिंह राम वामन आदि ये सब श्री कृष्ण ही हैं, परंतु केवल उन्होंने अपना आकार या रूप बदल लिया है, बस उन्होंने एक अलग भाव स्वीकार कर लिया है। तो वृंदावन में श्री कृष्ण जो रहते हैं उनको अवतारी कृष्ण कहते हैं, क्योंकि उनसे समस्त अवतार उत्पन्न होते हैं। तो वृंदावन के बाहर यहां तक कि मथुरा में भी वासुदेव कृष्ण कार्य करते हैं, और बलराम जी भी उसी तरह से जब मथुरा में आते हैं तो अपने संकर्षण के रूप में आते हैं। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन और मथुरा के बीच में एक दिव्य सीमा है, और उस सीमा को कभी भी वृंदावन के कृष्ण पार नहीं करते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, कि वृंदावन के एक कदम बाहर भी श्री कृष्ण कभी नहीं जाते हैं, वृंदावन को छोड़कर कहीं भी कभी भी नहीं जाते श्री कृष्ण, सदा सर्वदा श्री कृष्ण वृंदावन में ही निवास करते हैं, ये इनका नित्य धाम है। गोपियों के साथ में गोपों के साथ में श्री कृष्ण लीला करते रहते हैं, कभी प्रकट रूप में कभी अप्रकट रूप में। तो इस तरह से यहां ये सीमा यहां से होकर जाती है, जिस स्थान में हम बैठे हैं वो वृंदावन और मथुरा के बीच में दिव्य सीमा है, जो श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ में बैठे थे नंदगांव के पास में, वो द्विभुज अवतारी कृष्ण थे और मूल बलराम थे। परंतु यहां से जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना था, मथुरा से आगे फिर द्वारका हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र आदि जाना था, तो ये तो अवतार कृष्ण वासुदेव कृष्ण है और बलराम जी नहीं, वो संकर्षण है। बलराम ही हैं लेकिन केवल अलग भाव अलग रूप उन्होंने स्वीकार किया बस। तो इस स्थान में जब अक्रूर जी उनको अक्रूर तीर्थ से आगे ले गए तो वो वासुदेव और संकर्षण को ले गए, अवतार कृष्ण को ले गए। तो एक प्रश्न ये आता है फिर कि जो कृष्ण चढ़े थे वहां से, जो अवतारी कृष्ण हैं, तो उनका क्या हुआ फिर? श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो अप्रकट रूप में वृंदावन में ही रह गए। तो दो प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की, प्रकट लीला और अप्रकट लीला। प्रकट लीला तब होती है जब साधारण आदमी भी उनकी लीलाओं को देख सकता है, जैसे कि जब स्वयं भगवान का अवतार होता है, जैसे 5000 वर्ष पूर्व हुआ था ब्रज में, जब भी श्री कृष्ण सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया करते थे तो साधारण व्यक्ति भी उनका दर्शन कर सकते थे। साधारण व्यक्तियों की बात तो दूर है कि बड़े बड़े असुरों ने भी उनका दर्शन किया। तो जो भी कार्य जो भी लीलाएं श्री कृष्ण ऐसे अपने प्राकट्य के समय करते हैं उसे प्रकट लीला कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण थोड़े समय के लिए यहां रहते हैं, फिर वो अप्रकट हो जाते हैं, तो उनका तिरुभाव हो जाता है, तो अपनी लीलाओं को फिर से वो अप्रकट बना देते हैं। फिर साधारण व्यक्ति इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकता। जब भगवान की प्रकट लीला होती है तो व्यक्ति जो है वो साधारण इन आंखों से भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, परंतु अप्रकट लीला में केवल वही व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकते हैं जिनके दिव्य चक्षु विकसित हुए हों, जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगाया हुआ हो। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ऐसे व्यक्ति भगवान के नित्य लीला को देख सकते हैं, जान सकते हैं, परंतु जिनकी ऐसी दृष्टि नहीं है वो अप्रकट लीला को नहीं देख सकते। कई बार लोग यहां वृंदावन में आते हैं और कभी कभी हमारे संस्था के भक्त भी एक आध बार पूछ लेते हैं ऐसे कि हमने सुना कि जो सेवा कुंज में या निधि वन में रात को जाते हैं, कभी जीवित अवस्था में सुबह नहीं लौटते, क्योंकि वहां वो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को छुपकर देखना चाहते हैं। यदि वो छुपे भी और रात भर रहे भी, तो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की अप्रकट लीलाओं को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा हृदय पूरी तरह से स्वच्छ नहीं होगा, जब तक कृष्ण प्रेम का आविर्भाव हमारे हृदय में नहीं होगा, तब तक हम ऐसी चीजें नहीं देख सकते। ये ऐसी सस्ती चीज नहीं है। ऐसी जब वृत्ति हमारी होती है, इसे सहज ये कहते हैं, जो हम भक्ति को बहुत सहज लेते हैं, बहुत सस्ता लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कई बार चेतावनी देते हैं हमें कि हमें भक्ति को सहज या सस्ता नहीं लेना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना की है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मौन, कबे हमा है रबो श्री वृंदावन। कि कब वो दिन आएगा जब मेरा हृदय काम वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा और मैं वृंदावन को यथारूप जैसे है वैसे तत्वतः मैं दर्शन कर पाऊंगा। तो श्री कृष्ण यहां पर रह गए अपने अप्रकट रूप में, और कई साल बाद में, अनेक वर्षों बाद, फिर उन्होंने गोलोक यहां वृंदावन के निवासियों को वापस गोलोक वृंदावन भेज दिया, तो उनकी लीला भी अप्रकट हो गई। तो अभी वृंदावन में भी भगवान की अप्रकट लीला चल रही है। भगवान गौओं को ले जा रहे हैं चरने के लिए, गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं, अपने माता यशोदा और पिताजी नंद महाराज जी को वो आनंद प्रदान करते हैं। ये सारी लीलाएं आज भी चल रहे हैं। कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, ये नित्य लीला है, अभी भी वृंदावन में चल रही हैं ये सब, परंतु हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये अप्रकट रूप में है। तो प्रकट और अप्रकट रूप जो है वो हमारे शुद्धता के ऊपर निर्भर होता है। यदि उतनी शुद्धता और पात्रता हमारी रही तो हमारे लिए वो लीला भी प्रकट हो जाएगी। तो खैर, श्री कृष्ण यहां रह जाते हैं अप्रकट रूप में, और जब अक्रूर जी यहां अक्रूर घाट से रथ को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं मथुरा की ओर, उस समय जो रथ में बैठे हुए होते हैं वो है अवतार कृष्ण, अवतारी कृष्ण नहीं। इस तरह से आचार्यों ने समझाया है कि इस स्थान का महत्व बहुत ज्यादा है सीमा होने के कारण। तो ऐसे कई चीजें हैं, लीला के पीछे तत्व भी समझना चाहिए। जब हम तत्व अच्छी तरह से समझेंगे तो लीला को भी अच्छी तरह से हम जान पाएंगे। तो यहां पर ये बहुत सुंदर लीला हुई, इसलिए उसके बाद इसका नाम अक्रूर घाट हुआ। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस स्थान को अक्रूर तीर्थ कहा है, और मध्य लीला के 18वें अध्याय में अक्रूर तीर्थ के बारे में वर्णन काफी विस्तार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे, ब्रज आए थे, सबसे पहले उन्होंने सारे वनों का दर्शन किया, अनेक वनों का, फिर मथुरा आए। मथुरा में वो मिले एक भक्त से जो माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। वो एक सनोड़िया ब्राह्मण समाज के व्यक्ति थे। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इनका संबंध माधवेंद्र पुरी से है, तो बड़े प्रसन्न हुए, उनके साथ में रहे। परंतु वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए मथुरा को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए अक्रूर तीर्थ में या अक्रूर घाट में, और यहां पर रहे। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वो वृंदावन क्यों नहीं गए, क्योंकि वृंदावन में भी बहुत भीड़ हुआ करती थी, और यहां भी भीड़ हुआ करती थी, तो यहां उठ के वो वृंदावन जाते थे रोज प्रातः काल में। कभी पहले दिन गए तो कालिया दह में गए, केशी घाट गए, फिर अगले दिन जाकर वो रोज इमली तला, वहां आप देखेंगे शायद आपने देखा भी होगा इस यात्रा में, तो इमली का वृक्ष है उसके नीचे बैठ के वो हरिनाम लिया करते थे। तो ऐसे भाव विभोर अवस्था में अनेक घंटों तक हरिनाम लेते लेते वहां वो बैठ जाते और फिर मध्यान्ह के समय वो अक्रूर घाट लौट के आते यहां पर, और यहां फिर अपना प्रसाद का सेवन करते। उसके बाद फिर यहां के जो निवासी थे वो आते थे उनसे मिलने, तो हरिनाम के महत्व का वर्णन वो करते थे, उनको प्रचार करते थे कि कैसे कृष्ण नाम हमें लेना चाहिए। तो ऐसे जब महाप्रभु यहां रहा करते थे अक्रूर तीर्थ में, एक दिन उन्होंने देखा कि काफी बड़ी भीड़ आ रही है अक्रूर तीर्थ की ओर, सब लोग वृंदावन से लौट के आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा सबसे कि क्या बात है, इतना कोलाहल क्यों मच रहा है? तो सारे लोगों ने कहा कि हम सब ने कृष्ण को देखा है, कृष्ण प्रकट हुए हैं। वो जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे, लेकिन जो वो बता रहे थे वो कोई दूसरी बात थी। वो कहने लगे कि रोज आज कृष्ण प्रकट हो रहे हैं यमुना जी में, कालिया के फणों पे वो नृत्य करते हैं, और सबने देखा है कि वहां पर कृष्ण रात को प्रकट होते हैं यमुना जी में, और जब नृत्य करते हैं तो कालिया के फणों के ऊपर जो रत्न हैं वो भी चमकने लगते हैं। इसलिए हम सब कृष्ण को देख चुके हैं, उनका दर्शन हमने किया है। तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, बहुत ठीक कहा आपने, ठीक कहा। मतलब वो कहना चाहते थे कि बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने सोचा अभी कह के कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ऐसे 3 दिन लगातार हुआ, चैतन्य महाप्रभु यहां से इमली तला जाते, जप आदि करके वापस यहां चले आते, और फिर वो शाम को देखते कि ये लोग अभी आ रहे हैं सब। तो एक दिन हुआ ये 3 दिन के बाद कि चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे जिनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। वैसे तो विद्वान थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास आए और कहने लगे कि क्या मैं भी कृष्ण का दर्शन करने जा सकता हूं यमुना जी में, सारे ब्रजवासी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा की बलभद्र भट्टाचार्य के ऊपर। कृपा भी अलग अलग रूप में आती है, बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो कृपा को पहचान सके। तो इस बार महाप्रभु की कृपा कैसे आई, महाप्रभु ने थप्पड़ दे दिया बलभद्र भट्टाचार्य को और कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, इन मूर्ख लोगों की तरह भी तुम मूर्ख बन गए हो, इतने बड़े विद्वान तो इनके संग में आकर तुम भी मूर्ख बन गए, कलयुग में कृष्ण क्यों प्रकट होंगे ऐसे। खैर जो भी हो, कल रात को जाना, तुम्हें जाना भी है तो कल रात को जाना। तब तक थोड़े समय बाद थोड़े सज्जन लोग जो यहां इस प्रांत में रहा करते थे वो आ रहे थे, वो चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि क्या सबने कृष्ण का दर्शन किया है? तो फिर वो सज्जन सब कहने लगे, अरे नहीं नहीं वो भ्रम था। क्या क्या हुआ? कहने लगे कि एक आदमी मछली पकड़ने जाता था रात को, उसका एक नौका था और साथ में वो एक दिया भी लेके जाता था, लालटेन लेके जाता था, तो अंधेरे में ठीक से सबको दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति जो है ये कृष्ण है, जो नौका है वो कालिया है, और जो दिया है जो लेके जाता है वो कालिया के फणों में जो रत्न है वो है। तो ऐसे लोग गलत समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में रहस्य अब खुल गया कि ये कृष्ण नहीं है। और फिर वो लोग कहने लगे कि लेकिन अब हम श्री कृष्ण को हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि ये कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप सन्यासी हैं और सन्यासी तो भगवान नारायण का ही स्वरूप है, तो इसलिए हमने साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन किया है। वैसे जो मायावादी संप्रदाय होते हैं उनमें अनेकों में ऐसी धारणा होती है, दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत, कि ऐसे दंड ग्रहण करने से, सन्यास में जब व्यक्ति दंड ग्रहण करता है तो वो नारायण बन जाता है। इसलिए फिर एक दूसरे को जब वो संबोधित करते हैं तो ओम नमो नारायणाय कहते हैं कि मैं आपको नमन करता हूं जो कि स्वयं नारायण है। फिर सामने वाला भी उनको उनका संबोधन करेगा, ओम नमो नारायण, आप भी नारायण हैं, ऐसे एक दूसरे का संबोधन करते हैं। जब हमने संन्यास लिया था तो हमारे संस्था के एक संन्यास मिनिस्टर हैं जो संन्यास के कमिटी का देखभाल करते हैं, तो जब पहले हमसे मिले तो वो भी हमसे ओम नमो नारायण कह रहे हैं, ऐसे मजाक कर रहे थे। तो खैर ऐसी धारणा होती है लोगों में और हुआ करती थी उस समय भी, क्योंकि उस समय मायावाद का प्रभाव सब जगह फैला हुआ था। तो लोग सोचते थे कि सन्यासी मतलब भगवान नारायण ही है। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने कानों में हाथ उंगलियां रख ली और कहा, विष्णु विष्णु ऐसे मत कहो, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो एक साधारण जीव हूं, जीव को भगवान कह के संबोधित करना ये बहुत अपराध है बड़ा। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है, जीव तो भगवान का अंश है। यदि हम सूर्य के किरण के एक अणु को हम सूरज कह के पुकारें तो ये ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आग की चिंगारी और आग में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार से जीव और भगवान कृष्ण में बहुत बड़ा अंतर है। हम तो केवल कृष्ण के दास हैं। और फिर कई लोग थे, उन्होंने कहा, हाँ हम ये जानते हैं लेकिन आप एक मनुष्य नहीं हैं, जो आकृति प्रकृति आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से, आपके शरीर से, आपके लक्षणों से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि आप तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। ऐसे वो श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लगे। समय के अभाव के कारण हम विस्तार में नहीं वर्णन कर सकते। तो ऐसे वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करके फिर वहां से चले गए। फिर इस घटना के बाद चैतन्य महाप्रभु यहीं पर बैठे थे, अक्रूर तीर्थ में ही यमुना जी के तट में बैठे थे। और फिर उनको याद आया कि इसी स्थान में, यही स्थाने अक्रूर वैकुंठ दर्शन करी लो, कि यहां अक्रूर ने बैठ के वैकुंठ का दर्शन किया था। व्रजवासी लोग गोलों को दर्शन पाई लो, और जो वृंदावन के वासी हैं उन्होंने गोलों का दर्शन यहीं पे पाया था। तो ये सोचकर भाव विभोर हो गए चैतन्य महाप्रभु और कूद पड़े यमुना जी के जल में और जल के अंदर रहे। उस समय उनके साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्णदास, ये राजपूत थे। जब एक बार महाप्रभु इमली तला में बैठे हुए थे हरि नाम करते करते, तो ये कृष्णदास राजपूत जो यमुना जी के उस पार रहा करते थे वो वहां पर आए हुए थे। महाप्रभु का दर्शन करते ही उनको समझ में आया कि ये तो कोई विशेष व्यक्ति है। उनको प्रणाम किया और तुरंत उनके आश्रम में आ गए। तो महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार की और कृष्णदास राजपूत इमली तला से महाप्रभु के साथ अक्रूर घाट यहां पर आए। महाप्रभु का महाप्रसाद बलभद्र भट्टाचार्य ने उस कृष्णदास राजपूत को दिया। तो जब यह घटना हुई कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने छलांग लगाई थी जल में यमुना जी में, तो ये कृष्णदास वहां बैठे हुए थे। उन्होंने हाहाकार मचा दिया, अरे अरे क्या, देखो 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 क्या हुआ, महाप्रभु ने छलांग मार दी जल में। तो बलभद्र भट्टाचार्य पास में थे, दौड़ के आए, वो भी कूद पड़े जल में और बड़े मुश्किल से चैतन्य महाप्रभु को जल से बाहर निकाल दिया। तो बड़े चिंतित हो गए थे बलभद्र भट्टाचार्य कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने सनोड़िया ब्राह्मण से, जो भी उनके साथ आए थे यहां मथुरा से, उनसे एकांत स्थान में चर्चा की। महाप्रभु ने ऐसे यहां पर किया, मैं पास में था तो अच्छी बात है, मैं कुछ कर सका, लेकिन महाप्रभु अकेले वृंदावन जाएंगे, वहां यमुना जी में ऐसे कर बैठे तो क्या करेंगे हम, ये तो हमें बहुत डर लग रहा है, यहां महाप्रभु को हानि पहुंच सकती है। तो मेरी राय ऐसे है कि महाप्रभु को यहां से वृंदावन से दूर ले जाना चाहिए हमें। तो सनोड़िया ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, बात ठीक कह रहे हो आप, तो उनको प्रयागराज ले जाओ। वैसे भी माघ महीना की शुरुआत, माघ महीना शुरू हो ही गया है, मकर संक्रांति का स्नान वहां कर लो प्रयाग में। तो फिर बलभद्र भट्टाचार्य ने चैत्र महाप्रभु से प्रस्ताव किया और उनको यह भी कहा कि वैसे जितने भी सारे इस प्रांत के ब्राह्मण हैं वो सब आपको निमंत्रण दे रहे हैं प्रसाद के लिए। वैसे जो सनोड़िया ब्राह्मण थे उन्होंने जाके सब जगह बात फैलाई थी कि यहां श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो आप उनका स्वागत कीजिए, उनको निमंत्रण कीजिए आपके घर में भोग प्रसाद के लिए। तो 10-12 कम से कम निमंत्रण प्रतिदिन आया करते थे महाप्रभु के लिए, लेकिन बलभद्र भट्टाचार्य केवल एक निमंत्रण को स्वीकार कर सकते थे ना, कितने जगह में जाएंगे महाप्रभु प्रसाद लेने के लिए, एक जगह ही तो जा सकते हैं। और कभी कभी ये जो ब्राह्मण थे, पंचगौड़ ब्राह्मण और पंच दाक्षिणात्य ब्राह्मण, 5 स्थान हैं उत्तर भारत में जहां से मुख्य ब्राह्मण होते हैं, जैसे कान्यकुब्ज है, गौड़ है, मिथिला है, उत्कल है, सारस्वत है, ये पंचगौड़ ब्राह्मण कहलाते हैं। इन 5 प्रांतों के लोगों के ब्राह्मण पहले के समय से प्रसिद्ध है, और उसी प्रकार से पंच दाक्षिणात्य ब्राह्मण है जो दक्षिण भारत में जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिल, ऐसे 5 स्थान वहां के ब्राह्मण। तो कविराज गोस्वामी के वचनों से ऐसे पता चलता है कि यहां वृंदावन में भी वहां के ब्राह्मण भी आए थे, पंचगौड़ और पंच दक्षिणात्य, वो यहां पर आके चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाए करते थे, फिर अपने शालिग्राम शिला को भोग चढ़ा के फिर महाप्रभु को वो खिलाते थे। तो ये सारी चीजें हो रही थी यहां पे, और बलभद्र भट्टाचार्य तो ये नहीं कह सके महाप्रभु से कि हम आपको ले जाना चाहते हैं इसलिए कि आप ऐसे पानी में छलांग मार गए। तो उन्होंने कहा कि देखो यहां तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आके फिर मुझे बहुत कष्ट देते हैं कि हमारे घर में ले आओ, हमारे घर में ले आओ, तो अब यहां से हमें जाना चाहिए। तो महाप्रभु हंस पड़े और उन्होंने कहा कि बलभद्र भट्टाचार्य, तुम्हारी कृपा से ही मैं ब्रज आ सका हूं, अब तुम मुझे यहां से ले जाना चाहते हो तो ठीक है, जहां तुम मुझे ले जाओगे मैं खुशी से तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। तो फिर अक्रूर तीर्थ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की ओर गए, अंत में प्रयाग पहुंचे। प्रयाग पहुंचकर रूप गोस्वामी को उन्होंने 10 दिन उपदेश दिए, फिर और आगे चल के वाराणसी में सनातन गोस्वामी को 2 महीने उपदेश दिया और फिर आगे जगन्नाथपुरी की ओर चले। तो चैतन्य महाप्रभु यहां अनेक दिन रहे, इस स्थान में जहां हम अब बैठे हैं, और ये सारी लीलाएं यहां पर हुई थी। चैतन्य महाप्रभु के बाद में भी जाह्नवा माता, जो कि बंगाल के वैष्णवों में से सबसे प्रमुख वैष्णवी मानी जाती थी, नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, वो भी यहां पर आई थी अक्रूर तीर्थ में, और यहीं पर सारे वृंदावन में रहने वाले गौड़ी वैष्णवों का एक सम्मेलन हुआ था, एक इष्ट गोष्ठी हुई थी, वो भी एक अक्रूर तीर्थ में ही की गई थी, ऐसे भक्ति रत्नाकर में वर्णन है। तो ये सारे लीलाएं यहां पर अक्रूर तीर्थ में हुई। लेकिन और एक महत्वपूर्ण लीला है, समय के भाव के कारण हम संक्षेप में ही बताएंगे, और वो ये है कि पास में ही एक स्थान है भातरोण, जहां पे भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्रों को यज्ञ पत्नियों ने भोजन अर्पण किया था। ये भातरोण नाम इसलिए आया, भात आप जानते हैं ना, भात क्या है, अन्न है, तो इसलिए भातरोण, जहां यज्ञ पत्नियों ने अन्न और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन अर्पण किए थे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो एक बार हुआ, ये शुकदेव गोस्वामी करते वर्णन करते हैं, ये उस समय की लीला है जब गोवर्धन लीला हुई नहीं थी। तो श्री कृष्ण उस समय हो सकता है 6 और 7 साल के बीच में थे। गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी आयु 7 साल की थी, तो 6 और 7 साल के बीच में कभी ये घटना हुई। तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के पास आए और कहने लगे, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हणा, हे शक्तिशाली भुजाओं वाले बलराम और हे दुष्टों का दमन करने वाले श्री कृष्ण, अभी और एक दुष्ट व्यक्ति बैठा है जिसका दमन आपको करना है और वो हमारे पेट में है, बहुत भूख लगी है। तो पेट, ये भूख नाम के राक्षस या उसका भी दमन करना है, तो कोई व्यवस्था करो हमारे भूख को मिटाने के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पास में याज्ञिक ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, आंगिरस यज्ञ कर रहे हैं स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए, तो उनके पास जाओ और वहां पहुंच के तुम बलराम जी के नाम में ये दक्षिणा मांगो, उनसे प्रसाद मांगो। तो श्री कृष्ण ने शायद सोचा होगा, ऐसे आचार्यों ने वर्णन किया है, कि कम से कम बलराम जी तो क्षत्रिय हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, और मैं तो वैश्य हूं, नंद महाराज और यशोदा माता का पुत्र हूं, तो हो सकता है कि मुझे दक्षिणा देने में या प्रसाद देने में हिचकिचाए ब्राह्मण, कम से कम क्षत्रिय को दे दें, तो तुम बलराम का नाम ले लो। तो ये सब ब्राह्मण जो थे वो भक्त नहीं थे, वैष्णव नहीं थे, वो कर्मकांडीय ब्राह्मण थे। कर्मकांडीय ब्राह्मण अर्थात जो वेदों के कर्म कांड के भाग का अनुशीलन करते हैं, सकाम कर्मी होते हैं ये। वो वेदों के पाठ पूजा आदि करते हैं किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए, उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करें या श्री कृष्ण की सेवा करें या श्री कृष्ण से प्रेम करें, ये उनकी भावना नहीं होती है। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2 अध्याय में कहा है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः, कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ऐसे कई लोग होते हैं हे अर्जुन, जो वेदवाद रताह कहलाते हैं, तथा कथित वेद के अनुयायी, और पुष्पिताम वाचम, वेदों के बले पुष्प के समान सुंदर ऐसे जो वचन होते हैं उनसे बड़े आकर्षित होते हैं, और ऐसे कर्मकांड के विधियों का पालन करते हैं भोगेश्वरी गतिम प्रति, क्योंकि वो भोग ऐश्वर्य आदि चाहते हैं, स्वर्गलोक की प्राप्ति, ऊंचे जन्म की प्राप्ति अगले जन्म में, तो ऐसी चीजें चाहते हैं। तो वास्तव में ये लोग वेदों के निष्कर्ष को नहीं जानते हैं, भले वेदों के मंत्रों को जानते हैं, अनेक श्लोकों का उच्चारण घंटों तक कर भले कर पाएं, लेकिन फिर भी इतना तथाकथित ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान का सार क्या है वो ये नहीं जानते हैं, ज्ञान का वेदों का उद्देश्य क्या है वो नहीं जानते हैं। यज्ञों वै विष्णु हो, यज्ञ शब्द का दूसरा अर्थ है विष्णु या श्री कृष्ण। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि जितने भी यज्ञ हैं उनका भोक्ता मैं ही हूं हे अर्जुन। तो खैर, पहुंचे भक्त ये ग्वाल बाल वहां पर उनके सामने, उनको नमस्कार किया, पूरा दंडवत प्रणाम किया, और उनको भूमि देवाह कह के संबोधित किया, लेकिन बच्चे निराश हुए क्योंकि ब्राह्मणों ने उनकी ओर देखा भी नहीं। अब यदि हमसे कोई बात नहीं करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। देखिए, कोई हमसे भला बुरा कुछ कह दे उससे तो बुरा लगता ही है, लेकिन पूरी तरह से कोई हमारी उपेक्षा करे, देखे भी नहीं हमारी ओर, और बुरा लगता है। तो ब्राह्मणों ने इन बच्चों ने देखा कि ब्राह्मण हमारी ओर देख भी नहीं रहे हैं, ना हां बोल रहे हैं ना ना कह रहे हैं। तो काफी कुछ कहने के बाद भी जब ब्राह्मण कुछ बोल नहीं रहे थे तो ये बच्चे वहां से चले गए। वैसे ब्राह्मणों ने सोचा, बच्चों ने सोचा होगा कि शायद ये ब्राह्मण सोच रहे हैं कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं और ये लोग तो वैश्य हैं, ग्वाल बाल हैं, तो इनको कैसे पहले हम दे सकते हैं, पहले हम लोग ग्रहण कर लें फिर उसके बाद बचा हुआ प्रसाद उनको दे सकते हैं। लेकिन ग्वाल बाल उनको याद दिलाना चाहते थे अन्नस्य क्षुदितम पात्रम, कि भोग या प्रसाद, भोजन प्राप्त करने वाला योग्य व्यक्ति कौन है, पात्र कौन है, क्षुदितम जो भूखा है। कोई व्यक्ति भूखा है तो वो भोजन प्राप्त करने योग्य है, चाहे समय कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, खिला देना चाहिए। उस समय विचार नहीं करना है कि हम ब्राह्मण हैं कौन है और सामने वाला कौन है। तो ऐसे ये बच्चे जो है बड़े बुद्धिमान थे, वास्तव में ये तो कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, नित्य पार्षद हैं और उनमें से थोड़े तो साधन सिद्ध हैं, अनेक जन्मों से उन्होंने तपस्या की थी, भगवान का भजन किया था, इसलिए उन्हें भगवान की सेवा करने का अवसर इस समय मिला था, भगवान का संग प्राप्त हुआ उनको। तो खैर, जब निराश हो गए बालक तो सब श्री कृष्ण के पास आए, तो श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण उन ब्राह्मणों के ऊपर गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण बालकों को और हम सबको भी बताना चाहते थे कि भिक्षुक की सेवा ही ऐसे होती है। जब कोई व्यक्ति भीख मांगता है वो गुस्सा हो जाएगा तो उसको भूखा ही रहना पड़ेगा, तो कौन भिक्षा देगा उसे। जो भिक्षुक होता है उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और हम वैष्णव भिक्षुक के समान है, हम जाते हैं सब पूछते हैं कुछ कृष्ण के लिए दीजिए, या हम कुछ कृष्ण के बारे में सुनाना चाहते हैं लोगों को, बहुत कुछ कभी सुनना पड़ता है, तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ये बतलाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तो जाओ उनकी पत्नियों के पास जाओ। उनकी पत्नियों के पास गए तो वो बड़े प्रसन्न हुई उनको देखकर, और उन्होंने तुरंत जो भी सामग्री उनके पास थी वो सब दे दी। वास्तव में इन यज्ञ पत्नियों ने श्री कृष्ण का दर्शन कभी नहीं किया था पहले, तो फिर वो शुद्ध भक्त हुई कैसे, क्योंकि अनेक स्त्रियां यहां पर आया करती थी, कोई फल बेचने, कोई फूल बेचने, कोई तांबूल आदि बेचने, और वृंदावन की महिलाएं भी आया करती थीं, तो उनके मुख से इन यज्ञ पत्नियों ने सुना था श्री कृष्ण के बारे में। जैसे कि रुक्मिणी देवी ने कौंडिन्यपुर में नारद आदि ऋषियों के मुख से उनके पिता भीष्मक राजा के दरबार में कृष्ण का गुणगान सुना था, और ऐसे श्रवण करके कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ रुक्मिणी देवी के हृदय में, ठीक उसी प्रकार से इन यज्ञ पत्नियों के हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम उत्पन्न हुआ केवल उनके बारे में श्रवण करने से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हम सबके लिए है कि भगवान का दर्शन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करें। दर्शन करने का मतलब है कि हमें ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाएं। मूर्ति रूप में दर्शन अवश्य करना चाहिए हमें। तो यज्ञ पत्नियां जो हैं उनका मन तुरंत श्री कृष्ण के चरणों के प्रति दौड़ता हुआ चला गया। जैसा कि कपिल देव जी भागवत में वर्णन करते हैं, मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसों बुधौ। कपिल देव जो कि स्वयं भगवान है अपनी माता देवहूति से कहते हैं, मैं तो सबके हृदय में विराजमान हूं, और जब ऐसे कोई भक्त होते हैं जो मेरे गुणगान सुनने मात्र से उनका मन स्वाभाविक रूप से मेरी ओर बहता है, जिस प्रकार से गंगा जी पहाड़ों से नीचे आती है बहते बहते सीधे समुद्र की ओर चलती है, भले बीच में कोई रुकावटें आए भी, तो वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका मन मेरे चरणों की ओर चलता है, तो यज्ञ पत्नियों का मन भी कृष्ण की ओर चला। जो भी उनको घरों में था प्रसाद आदि वो जल्दी से लेकर आए। जब आप पहुंचे कृष्ण के सामने तो कृष्ण ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप क्या क्या लेकर क्या उद्देश्य से आए, किस प्रयोजन से यहां आए हैं आप, तो आपको तो वापस जाना चाहिए। वैसे आप तो जानते हो कि मैं आत्मप्रिय हूं, आत्मप्रिय मतलब आत्मा के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति हूं। हर एक व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है ना, सही है ना, इसलिए तो जान बचाने के लिए हम क्या नहीं करते हैं। सबसे प्रिय व्यक्ति हमारे लिए हम स्वयं हैं। और कृष्ण कहते हैं कि हम तो आत्मा के आत्मा हैं, हम तो आत्मप्रिय हैं, इसलिए जो व्यक्ति कुशल हैं वो स्वार्थ दर्शन है, वो अपने स्वार्थ को या अपने हित को अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे शरण में आकर मेरा आश्रय ग्रहण करके मेरी भक्ति करना यही सबसे ऊंचा हित है हर एक के लिए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं इस बात को जानते हैं, इसलिए आप अब वापस लौट के जाओ, अपने पति आपके पति सब वहां राह देख रहे होंगे, उनकी सहायता करना। तो यज्ञ पत्नियों ने उत्तर दिया कि ऐसे आप क्रूर वचन मत कहिए, आपने वचन दिया है शास्त्रों में कि जब कोई आपके शरण में आता है तो आप उसे ठुकराएंगे नहीं, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आप प्रसिद्ध हैं। अब हम जब घर छोड़ के आए हैं तो हम वापस नहीं जा सकते, हमारे रिश्तेदार हमें वापस नहीं लेंगे, हम भले यहीं वन में रहेंगे। यदि आप सोचते हो कि आप ग्वाल बाल हो वैश्य हो और हम ब्राह्मण हैं, जो तो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो वैश्य लड़के के शरण में कैसे जा सकते हैं, यदि ये आप सोच रहे हो कि समाज ऐसे भर्त्सना करेगी तो हम यहीं वन में रह जाते हैं, और आपके चरण कमलों से के स्पर्श किए हुए जो तुलसी के मंजरियां पत्ते हैं पत्र हैं हम उनको अपने सर पे ग्रहण करके ही संतुष्टि प्राप्त करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको काफी समझाया और कहा कि नहीं, समाज में ये निंदा का कारण हो जाएगा, तो आप अवश्य शीघ्र घर चले जाना, और मैं आपको ये वायदा देता हूं कि आपके परिवार के सदस्य अच्छी तरह से ही व्यवहार करेंगे आपके साथ में, कोई आपको डांटेगा नहीं। और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया उन यज्ञ पत्नियों को, उन्होंने कहा कि मेरा निजी सानिध्य प्राप्त करना यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल सानिध्य प्राप्त करने से भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, भक्ति उत्पन्न करने का रास्ता है कि हमें भक्त को चाहिए कि वो मेरे बारे में अर्थात कृष्ण के बारे में श्रवण करें, स्मरण करें, अर्चा विग्रह का दर्शन करें, ध्यान करें। ऐसे हम यदि भक्ति करेंगे तो भक्ति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा हमारे हृदय में। ऐसे कह के श्री कृष्ण ने उनको वापस भेज दिया। उधर जब यज्ञ पत्नियां वापस घर पहुंच गईं, तो उनके पति आदि बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए, बल्कि वो आश्चर्यचकित हुए कि हमारी पत्नियों ने कोई गुरुकुल में जाके पढ़ाई नहीं की, कोई तपस्या नहीं की, जितने भी क्रियाकलाप है वेदों के उनको कैसे करना चाहिए ये भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक जीवन के चरम सीमा को प्राप्त हो गए हैं, और हम ब्राह्मण होने के बाद भी हम कृष्ण बलराम को नहीं पहचान पाए, फिर अपने आप को धिक्कारने लगे, धिक जन्म, हमारे तथाकथित ऊंचे जन्म का धिक्कार हो, धिक बहुज्ञाताम, हमारे वैदिक ज्ञान का धिक्कार हो, धिक कुलम, हमारे ऊंचे कुल का धिक्कार हो, धिक व्रतम, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का जो पालन हम कर रहे हैं उसका धिक्कार हो, धिक क्रिया दाक्षम, जो यज्ञ आदि संपन्न करने की जो क्रियाओं में जग दक्षता हमारी है उसका धिक्कार हो, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी, तप आदि होने के बाद भी हम श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए जो कि हमारे सामने आए, और हमारी पत्नियां कितनी महान हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि उनके हृदय में कृष्ण बलराम के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लीला हुई। इसके बाद भी हालांकि ब्राह्मण इतने पछता रहे थे, वो श्री कृष्ण के पास नहीं जा पाए कंस के डर से। तो आचार्यों ने बताया है, विशेष करके श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल कृपा प्राप्त करते हैं और शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इनमें से उदाहरण सुखदेव गोस्वामी है, बलि महाराज हैं, और ये यज्ञ पत्नियां भी हैं, और साधन करके जो सिद्ध होते हैं वो हैं जैसे मार्कंडेय ऋषि। तो इन्होंने ऐसी कोई तपस्या नहीं की थी, सुखदेव जी ने भी नहीं की थी, परंतु भगवान कृष्ण की कृपा शक्ति का स्पर्श मात्र से उनका परिवर्तन हुआ। तो आचार्यों ने वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा शक्ति का स्पर्श जब इन यज्ञ पत्नियों से हुआ तो उनका शरीर बदल गया, आध्यात्मिक शरीर बन गया, और उस दिन के बाद उन्होंने अपने उनके पतियों ने उनका स्पर्श भी नहीं किया। जैसे पारसमणि किसी लोहे का स्पर्श करने से भी उसे सोने में परिवर्तित करता है, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा शक्ति के स्पर्श से इन यज्ञ पत्नियों का शरीर दिव्य हो गया और उनका जीवन धन्य हो गया। यज्ञ पत्नियां तो वापस चली गईं श्री कृष्ण के पास से, लेकिन गोपियां जब श्री कृष्ण के पास आई थी वंशीवट में, श्री कृष्ण को वापस भेजना चाहा था, वो वापस नहीं गईं। तो आचार्यों ने समझाया है कि यद्यपि यज्ञ पत्नियां शुद्ध भक्त हैं, बहुत ऊंचे स्तर पे हैं, लेकिन गोपियों की तुलना में देखा जाए तो उस स्तर में नहीं है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, गोपियों जैसा प्रेम श्री कृष्ण का कोई नहीं कर सकता है। तो खैर और भी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय हो चुका है, क्योंकि ऊपर दर्शन 11:45 को बंद होता है, तो उसके पहले आपको वहां पहुंचना है जिस स्थान में यज्ञ पत्नियों ने श्री कृष्ण को भोजन खिलाया था। तो अब तुरंत आपको शायद चल के जाना होगा ऊपर की ओर, ताकि आप दर्शन वहां ले पाए। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अक्रूर घाट की जय, श्री भात्रोण क्षेत्र की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।